मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 9 फरवरी 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी अपने नौजवान साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अभी अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। ये साथी हैं यश सैनी, आप दौसा राजस्थान से हैं, और दीपा कन्वर, आप जयपुर राजस्थान से हैं। तो यश और दीपा, आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों अब हम आते हैं न्यूज एनालिसिस पर और इसकी शुरुआत करते हैं एआईआर न्यूज से। फ्रेंड्स, कल के एआईआर न्यूज को अगर आप सामान्य तौर पर सुनेंगे तो आपको कोई बहुत, जिसको हम कहते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज या बहुत ही कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट, इस तरह की कोई चीज दिखाई नहीं दी होगी, कोई चीज सुनाई सॉरी नहीं दी होगी। लेकिन मित्रों जब हम उसमें ढूंढेंगे तो हमें एक बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा जो सिविल सर्विस के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और दोस्तों जो कहते हैं वो शब्द तो वहां इस्तेमाल नहीं किया गया है लेकिन उस शब्द के चारों तरफ ही वह न्यूज है और वह है कल के आकाशवाणी की पहली खबर जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का जिक्र किया है, यानी कि वह टॉपिक है करप्शन का, भ्रष्टाचार का। तो मित्रों इससे पहले कि मैं भ्रष्टाचार के बारे में बात करूं, आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे कुछ अपने थॉट्स शेयर करने जा रहा हूं सिविल सर्विस के लिहाज से। दूसरी जो खबर थी फ्रेंड्स उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के थी। आप लोगों को मालूम है कि हर दो महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समीक्षा करता है मौद्रिक स्थिति की और उसके अनुसार ही फिर वो अपनी नीतियां लेकर आता है। इसके बारे में, इसके डिटेल्स के बारे में हम लोग बहुत बार बातें कर चुके हैं, इसलिए मौद्रिक नीति क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मित्रों इसके बारे में मैं आज बात नहीं कर रहा हूं। और अब मैं आता हूं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और वह है भ्रष्टाचार पर। फ्रेंड्स आपने न्यूज में सुना कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। देखिए भ्रष्टाचार तो बहुत ही कॉमन टॉपिक हो चुका है और आज से नहीं, पता नहीं कब से ये टॉपिक चल रहा है। और ये केवल टॉपिक चल ही नहीं रहा है बल्कि सिविल सर्विस में भी वो उतना इम्पॉर्टेंट है, हमेशा इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन पूछे किस तरीके से जाते हैं। अब जो सिविल सर्विसेज हो गए हैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ बहुत अच्छे तत्व दिए। जैसे उन्होंने कहा कि ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो के खिलाफ जो लड़ाई है, ये बेसिकली किसी नोटबंदी को, उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक दल के प्रति नहीं है, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है और न किसी राजनीतिक दल को परेशान करना इसका उद्देश्य है, यानी कि यह राजनीतिक नहीं है, यानी कि यह चौतरफा है। पहली बात। दूसरी बात जो इससे भी बहुत महत्वपूर्ण है और जो मुझे लगता है कि सिविल सर्विस का के प्रश्न का आधार बन सकता है, वह यह कि इस भ्रष्टाचार के कारण या काले धन के कारण, ब्लैक मनी के कारण जो सबसे ज्यादा जो नुकसान उठाना पड़ता है उसमें उन्होंने तीन लोगों की बातें कही हैं। मित्रों ये थोड़ी सी बस ध्यान देने की बात है। पहला तो यह है कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है गरीब लोगों को। अब आप सोचिए कि गरीब लोगों को कैसे नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरे वर्ग की उन्होंने बात कही वो था मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग को नुकसान उठाना पड़ता है। और तीसरा वर्ग उन्होंने बताया था ईमानदार लोग। ये जो तीन लोग वर्ग हैं, ये तीन वर्ग इस भ्रष्टाचार से सबसे अधिक पीड़ित हैं, यानी कि बाकी जो वर्ग हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या यूं कह लीजिए कि वो इसके फेवर में हैं या इससे उनको फायदा ही पहुंचता है, जो भी आप कहना चाहें। तो दोस्तों अब हमारे सामने जो प्रश्न बनते हैं सिविल सर्विस के लिहाज से कल के न्यूज के आधार पर, वो ये, इस पर आप लोगों को विचार करना है, अपनी तरफ से इस पर सोचिएगा कि इससे गरीबों को किस तरीके से नुकसान होता है। और अभी जो मैं बात कह रहा हूं मित्रों वो ऊपरी तौर पर मत सोचिएगा कि गरीबों के काम नहीं होते और उनको रिश्वत देनी पड़ती है, तथ्यों पे जाकर के सोचिए। याद रखिए कि जब हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो उस भ्रष्टाचार के केंद्र में अर्थव्यवस्था है। जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो नो डाउट कि उसमें भाई भतीजावाद भी आ जाता है, भाई भतीजावाद भी भ्रष्टाचार है। यदि मैं किसी सही व्यक्ति को उसका अधिकार न दे करके और उसकी जगह पर अपने भाई को वह अधिकार दे देता हूं तो यह भी भ्रष्टाचार है। यानी कि पैसा, पैसे का लेन देन ही भ्रष्टाचार है, लेकिन ज्यादातर मामलों में पैसों का लेन देन ही भ्रष्टाचार है, राइट? तो अब आप देखिए कि ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो काला धन है, किस तरीके से गरीबों को नुकसान पहुंचाता है। अर्थशास्त्र पर जाइए, यहां मैं जो स्पेशली बात कहना चाह रहा था धन को लेकर के, कि ये अर्थशास्त्र का विषय है, पहली बात। दूसरी बात, फिर वो कहते हैं कि इससे मध्यम वर्ग को नुकसान पहुंचता है। जब मध्यम वर्ग को हम नुकसान पहुंचने की बात करते हैं मित्रों, तो वह अर्थशास्त्र के साथ साथ याद रखिए कि वह समाज शास्त्र का भी विषय बन जाता है। मध्यम वर्ग तक पहुंचते पहुंचते यह समाज शास्त्र हो जाता है। नो डाउट कि जब हम गरीबों तक इसको सीमित रखते हैं तो उसमें समाज शास्त्र नहीं आता, क्योंकि गरीब का मतलब ही है जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, भले उसके पीछे कारण चाहे जो भी हो, तो वहां अर्थशास्त्र है। लेकिन जब हम मध्यम वर्ग की बात करते हैं तो उसमें समाजशास्त्र भी आ जाता है कि उसको कैसे नुकसान पहुंच रहा है। तो अब आपको भ्रष्टाचार का जो समाज शास्त्रीय पक्ष है उस पर सोचना होगा। और इसके बाद फिर हम आते हैं ईमानदार लोगों को नुकसान होता है। तो जब हम ईमानदार लोगों तक पहुंचते हैं तो अब आप देखिए कि यही भ्रष्टाचार क्या बन जाता है। यही भ्रष्टाचार एक तरह से नैतिक शास्त्र बन जाता है, या कह लीजिए कि सांस्कृतिक मूल्य बन जाता है। आप देख रहे हैं कि इसकी रेंज देखिए। तो ये तीन वर्गों को आप इस तीन मुख्य तत्वों के आधार पर ही विश्लेषित करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद वो बेहतर होगा। तो मित्रों, न्यूज के आधार पर मुझे आपको यह बात बतानी थी। अब आप देखिए कि भ्रष्टाचार क्या है, कैसे है। अब उसके मैं सेकेंड स्टेज पर आ रहा हूं कि मैं हमेशा आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि प्लीज जो अनसॉल्व्ड पेपर हैं उन्हें समय समय पर आप कंसल्ट करते रहें, देखते रहें। जब भी आप किसी टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप सिलेबस देखें कि इस सिलेबस में इस टॉपिक के बारे में क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है, उसकी लंबाई चौड़ाई घेराई मोटाई वृत्त कितना है, यानी कि इस एक पॉइंट के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आ सकती हैं। आपके अंदर वो समझ होनी चाहिए जिसे मैं बिटवीन द लाइन्स कहता हूं, जो बातें नहीं लिखी गई हैं उनको आप समझ सकें। इसके बाद फिर आपको बकायदे अनसॉल्व्ड पेपर लेना चाहिए और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूं उस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने संख्या में पूछे जा रहे हैं, यानी कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो अनसॉल्व्ड पेपर से आपको वह दृष्टि मिल जाएगी, उसके उत्तर मिल जाएंगे। फ्रेंड, जब आप मेरे इस बताए हुए तरीके का इस्तेमाल, जब इस भ्रष्टाचार, आर्थिक कालाबाजारी इस टॉपिक पर करेंगे तो आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आंसर मिलेंगे और बड़े व्यावहारिक होंगे। आप देखेंगे कि ये जो टॉपिक है ये तो पता लगा कि फर्स्ट पेपर से लेकर के फोर्थ पेपर तक फैला हुआ है, फोर्थ पेपर तक फैला हुआ है। हर पेपर में इसके लिए जगह है और जगह होगी ही। जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट जनरल स्टडीज मेंस की बात कर रहा हूं मैं, मेंस में आपकी संस्कृति है, इतिहास है, राइट? तो वहां भी भ्रष्टाचार तत्व आ जाएगा। सेकेंड पेपर में तो है ही है, क्योंकि गवर्नेंस है और सिविल सर्विसेज है आपके टॉपिक में है। तो जहां गवर्नेंस है, सिविल सर्विसेज है, वहां तो भ्रष्टाचार टॉपिक होगा ही होगा, हालांकि वहां अलग से मेंशन नहीं किया हुआ है। सेकेंड पेपर में अलग से मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपको करप्शन पर पढ़ना है, लेकिन उसमें गुड गवर्नेंस मेंशन किया हुआ है, उसमें सिविल सर्विसेज, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, ये मेंशन किया हुआ है, तो वहां भी भ्रष्टाचार आ जाता है। थर्ड पेपर तो अर्थशास्त्र का ही है और भ्रष्टाचार अर्थशास्त्र ही है, तो उसमें तो होना ही होना है। और जो फोर्थ पेपर है दोस्तों, फोर्थ पेपर तो सच पूछे तो भ्रष्टाचार पर ही केंद्रित पेपर है। वहां भ्रष्टाचार का अर्थ बहुत व्यापक होता है, वो नैतिक रूप से भ्रष्ट है, वो सांस्कृतिक रूप से भ्रष्ट है, वो व्यवहार उसका व्यवहार बहुत ही भ्रष्ट है, वो आर्थिक रूप से भ्रष्ट है, पता नहीं। अब फिर भ्रष्टाचार वहां एकदम व्यापक रूप ले लेता है। तो फोर्थ पेपर में तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, मतलब भ्रष्टाचार पर ही ज्यादातर आधारित वो पेपर है कि गलत को सही कैसे करें, ये इसका फैलाव है, व्यापकता। ये जो सब्जेक्ट है अपने आप में बहुत व्यापक है। मैं अब आपको थोड़ा सा दोस्त, ये आप लोग अपने लेवल पर कीजिएगा, क्योंकि इस पर इतने सारे प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 4 सालों में कि मैं सब का विवरण यहां नहीं दे सकता, हर प्रश्न को पढ़कर नहीं सुना सकता, लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन जनरल स्टडीज का पेपर 2 और पेपर 3 से कुछ प्रश्न लिए हैं जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, ताकि आपको पता लग जाए कि भ्रष्टाचार पर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये मैं दोस्तों जानबूझकर कर रहा हूं, जानबूझकर इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ रहा हूं, और ये कहने के लिए मुझे माफ कीजिएगा, सब तो नहीं लेकिन ज्यादातर आप में से होंगे जो मेरे बताने के बाद भी अनसॉल्व पेपर नहीं उठाएंगे, नहीं देखेंगे। क्या सोचेंगे मालूम है, यार इसको ठीक है बाद में देख लेंगे, सर को थोड़ी पता लगेगा कि हमने देखा कि नहीं देखा, तो वो रह जाएगा। तो इसीलिए मैं आपके लिए वो गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता, तो जबरदस्ती ही सही, लेकिन मैं ही आपको पढ़कर सुना रहा हूं कि आप देखें कि किस तरीके के प्रश्न सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं। और दोस्तों मैं लेटेस्ट लेने की कोशिश कर रहा हूं, अभी जो 2016 में जो एग्जाम हुआ है, आप देखिए कि उसके सेकंड पेपर में, जनरल स्टडीज के सेकंड पेपर में एक प्रश्न पूछा गया है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। प्रश्न है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इन्वर्टेड कॉमा में है कि ईमानदारी सूचकांक में भारत काफी नीचे के पायदान पर है, यानी कि इनडायरेक्ट में कहा गया, कहने का मतलब है कि वो काफी बड़ा भ्रष्ट राष्ट्र है। संक्षेप में उन विधिक राजनीतिक आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों पर चर्चा कीजिए जिनके कारण भारत में सार्वजनिक नैतिकता का ह्रास हुआ है। देखा आपने, भ्रष्टाचार शामिल है इसमें। इंग्लिश में है इन द इंटेग्रिटी इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया स्टैंड्स वेरी लो, डिस्कस ब्रीफली द लीगल पॉलिटिकल इकोनॉमिक social and cultural factors that have caused the decline of public morality in India. दोस्तों ये second paper का question था। अब मैं आपको बता रहा हूं paper 4 पर भ्रष्टाचार से पूछे गए, paper 4 में भ्रष्टाचार पर पूछे गए प्रश्न। ये मैं आपको 2015 और 2016 के केवल 2-3 प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, और paper 4 में एक ही साल में भ्रष्टाचार को लेकर कई कई प्रश्न पूछे गए हैं। नमूने के बतौर मैं आपसे पहले चर्चा कर रहा हूं 2015 के एक प्रश्न की। देखिए, आज हम देखते हैं कि आचार संहिताओं के निर्धारण, सतर्कता सेलों, आयोगों की स्थापना, आरटीआई, सक्रिय मीडिया और विधिक यांत्रिकत्वों के प्रबलन जैसे विभिन्न उपायों के बावजूद भ्रष्टाचार पूर्ण कर्म नियंत्रण के अधीन नहीं आ रहे हैं। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया क, इन उपायों की प्रभावशीलता का औचित्य बताते हुए मूल्यांकन कीजिए। फिर है ख, इस खतरे का मुकाबला करने के लिए और अधिक प्रभावी रणनीतियां सुझाइए। दोस्तों मैं जानबूझकर इसके इंग्लिश का वर्जन नहीं पढ़ रहा हूं, उसमें थोड़ा सा अधिक वक्त लग जाएगा, क्योंकि मुझे थोड़े से दूसरे भी आपको बताने हैं। तो अब आप देखिए 2016 के प्रश्न जो भ्रष्टाचार पर हैं, और ये भी जनरल स्टडीज के 4th पेपर का है। 2016 के जानबूझकर मैं आपको के सामने 2 प्रश्न रखना हूं, ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि एक ही पेपर में एक ही टॉपिक पर कैसे कई कई प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें एक प्रश्न है, भ्रष्टाचार सरकारी राजकोष का दुरुपयोग, प्रशासनिक अदक्षता एवं राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, कौटिल्य के विचारों की विवेचना कीजिए। सीधे सीधे आप देखिए कि यह जो प्रश्न है ये भ्रष्टाचार के ऊपर है, उसके बारे में आपको किसी तरह का कोई संदेह यहां नहीं हो रहा होगा। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब आप देखिए कि उसमें क्या वो दे रहे हैं, अब है मित्रों वो मैंने देखा था, हाँ क्या कारण है कि निष्पक्षता और अपक्षपातीयता को लोक सेवाओं में, विशेषकर वर्तमान सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में आधारभूत मूल्य समझना चाहिए? अपने उत्तर को उदाहरणों के साथ सुस्पष्ट कीजिए। देखिए, यहां पर निष्पक्षता और अपक्षपातीयता की जो वो बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये मूलतः सीधे सीधे भ्रष्टाचार से ही जुड़े हुए हैं, एक अच्छे आचरण की वो बात कर रहे हैं। तो मित्रों, ये कुछ प्रश्न थे, और भी इसी तरह के मैं दूसरे भी प्रश्न हैं, उनको आपके सामने नहीं रख रहा हूं क्योंकि वक्त इतनी इजाजत नहीं दे रहा है। तो मित्रों, खासकर जो बात मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये कि ये जो करप्शन का जो मामला है, ये वैसे ही बहुत असंगीन है। फिलहाल उसके खिलाफ एक जंग से छिड़ी हुई है, और सिविल सर्विस में ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, इस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो प्लीज इस पर आप बहुत अच्छी तैयारी करें और बहुत ही तर्कपूर्ण तैयारी करें, इमोशनल नहीं, सतही नहीं। मित्रों, इस लिहाज से मैं आज आपको एक प्रेस की क्लिपिंग प्रोवाइड कर रहा हूं जो टाइम्स ऑफ इंडिया की है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो करप्शन है, उस करप्शन के लिए जो तीन चार जो उपाय सुझाए हैं, उसके जो रीजन बताए हैं, उन रीजन्स को आप सुन लीजिए। इससे आपको पता लगेगा कि तथ्यपूर्ण बातें क्या होती हैं। पहला तो उन्होंने रीजन बताया कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसके हाथ में शक्ति कुछ ज्यादा है, या कह लीजिए कि इंस्पेक्टर राज्य जैसा मामला है, और उनको डिस्क्रिशनरी पावर दी हुई है, मतलब रूल्स रेगुलेशन उतने मजबूत नहीं है और वह अपने खुद ही किसी चीज के बारे में निर्णय ले सकता है, और जो हमारा जो संगठन है वो भी बहुत ही अस्पष्ट किस्म का है, पहला रीजन। दूसरा कारण इन्होंने ये बताया कि जो हमारी जुडिशरी है, जो जिसे हम रिड्रेसल सिस्टम कहते हैं, वो ओवरबर्डन्ड है, उस पर बहुत ज्यादा काम का बोझ है। धनी लोग जो अब आर्थिक अपराधों में फंसे होते हैं, न्यायालय में चले जाते हैं, सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, पता लगा कि 10 साल 15 साल तक मामला खींच रहा है, तो उनको सजा हो ही नहीं पाती है। ये उन्होंने दूसरा कारण बताया। तीसरा कारण उन्होंने जो बताया है दोस्तों, कि जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है हमारा, जो वो क्रिमिनलाइज्ड होता जा रहा है, उसमें क्रिमिनल बहुत आते चले जा रहे हैं, और अगर क्रिमिनल को हम वोट दे करके अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो एक तरीके से उन्हें डेमोक्रेटिक मान्यता मिल गई, सेंक्शन मिल गया, पब्लिक लिजिटिमेसी मिल गई ना, लोगों का के द्वारा दिया गया उन्हें अधिकार मिल गया, और इसका नतीजा यह होता है कि फिर वो जो करते हैं वो भ्रष्टाचार के परिभाषा में, दायरे में आ जाता है। ये तीन उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, अगर आप चाहें तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। फिर इनको खत्म करने के लिए क्या उपाय होते हैं वो आप देख ही रहे हैं, भारत में भी वो प्रक्रिया शुरू है, आरटीआई आ रहा है, गुड गवर्नेंस के लिए दूसरी चीजें की गई हैं, सिविक सोसाइटीज आ रही हैं। तो मित्रों, वो एक बहुत व्यापक विषय है, उस पर हम लोग बातें अब नहीं कर सकते क्योंकि वक्त उसके लिए नहीं रह गया है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, मैं आपको दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्लिपिंग प्रोवाइड कर रहा हूं। उसमें एक है देवेंद्र शर्मा जी का, जो दैनिक भास्कर में छपा है, वो किसानों के ऊपर है। एक बिजनेस स्टैंडर्ड में है कि भारत को अब किस किस तरह के रिफॉर्म की जरूरत है ताकि वो आगे बढ़ सके। और एक जो है फ्रेंड्स, वो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, खासकर जो नागालैंड में जो अभी घटना घटी है उसको लेकर के उन्होंने वो आर्टिकल लिखा है। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, बाकी आप अपने सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। तो दोस्तों, अब मैं अंतिम चरण पर आता हूं, वही ईमेल का चरण है। सभी ईमेल भेजने वाले दोस्तों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: सौरभ सुमन, राम भुलावन तिवारी इलाहाबाद से, गोविंद प्रताप प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, अतुल साहू कानपुर उत्तर प्रदेश से, अनिश रंजन सरकार, रूपेश शर्मा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, और हेतराम प्रजापत जयपुर से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।